नमस्ते प्यारे बच्चों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12th इतिहास विषय अध्याय नंबर 2 समुद्रगुप्त के बारे में। प्राचीन भारत के चक्रवर्ती राजाओं की भांति समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजयों की उद्घोषणा हेतु अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराया था। समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी हमें समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उत्कीर्ण अश्वमेघ पराक्रम से मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने भारत के बहुत बड़े भूभाग को अपने अधीन कर एकता के सूत्र में बांधा और उससे कहीं अधिक भूभाग में उसका लोहा माना जाता था। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसकी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा है। समुद्रगुप्त के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र द्वारा संस्कृत भाषा की संपू शैली अर्थात गद व पद का मिश्रण में की गई। यह गुप्त काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है जिसमें समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय अभियान, व्यक्तित्व एवं गुप्तकालीन शासन प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती हैं। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज, लाखों गायों का दानी, उच्च कोटि का विद्वान और विद्या का संरक्षक एवं धर्म की प्राचीर भी कहा गया है। समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और 335 ईस्वी में गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा, यह एक महान शासक, कुशल सेनापति, सफल कूटनीतिज्ञ और बहुआयामी प्रतिभा से युक्त शासक था। हरिश्चंद्र ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीतियों का उल्लेख भी किया है जिसमें नंबर 1 है आर्यावर्त की विजय। सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत के गंगा यमुना दुआब क्षेत्र के 9 राजाओं अश्युत, बलवर्मा, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नंदी, नागसेन, नागदत्त, मतिल व रुद्रदेव को पराजित किया। समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को बलपूर्वक जीतकर राज प्रसाद भोद्रण की नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिलाया था। दूसरी बात देखने को मिलती है दक्षिणापथ की विजय। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों तथा कौशल, महाकांतर, कोरल, कोटूर, पृष्ठपुर, एरनपल्ली, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पल्लक, देवराष्ट्र, कुस्थलपुर आदि की पराजय, लेकिन समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के तहत मुक्त कर दिया था। तीसरा जो उल्लेख या बात हमें प्राप्त होती है वो है मध्य भारत के 8 राज्यों का विजय। समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के 8 यानी जंगली राज्यों को परास्त कर उन्हें अपना सेवक भी बनाया। नंबर 4 बिंदु है वो है सीमांत राज्यों व गणराज्यों की विजय। समुद्रगुप्त की विजयों व पराक्रम से भयभीत होकर सीमांत प्रदेशों के 5 राजतंत्रात्मक राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वो 5 राज्य जो राजतंत्रात्मक राज्य थे वो है समतट यानी गंगा का मुहाना, डवाक यानी आधुनिक डबोक, कामरूप जो वर्तमान में असम है, कृतपुर जालंधर का करतारपुर और नेपाल। इसी प्रकार पश्चिम भारत के 9 गणतंत्रात्मक राज्यों ने भी समुद्रगुप्त की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। वो 9 गणतंत्रात्मक राज्य मालव, अर्जुनायन, योद्धे, आभीर, मृदक, प्राजून, काक, सनकानिक, खरपरिक। समुद्रगुप्त ने इन राज्यों व गणराज्यों के साथ सर्व दानाज्ञाकरण प्राणायाम की नीति का अवलंब भी किया। और अंतिम बात है विदेशी शासकों पर प्रभाव। देवपुत्र शाही सहानुशाही शक मुरंड तथा सिंहल आदि विदेशी शासकों ने समुद्रगुप्त से भयभीत होकर मैत्री याचना की यानी मित्रता करने की इच्छा जताई। समुद्रगुप्त ने इनके साथ आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुत्म दंकित, स्व विषय भुक्ति शासन याचना की नीति का अनुसरण किया था। धन्यवाद।